नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीमा सुरक्षा मजबूत करने के लिए पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठ रोकने के लिए ममता बनर्जी से बार बार अनुरोध के बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई। इस अवसर पर लगभग 189 करोड़ रुपए की लागत से एसएसबी के कई शिविरों के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई। भारत और ब्राजील ने दूरसंचार तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दूरसंचार विभाग ने बताया कि यह समझौता ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग हुआ। दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। इस बीच केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक चल रही है। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीली डिजिटल अवसंरचना में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज जयपुर में हो रही है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों का स्वागत किया। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसे और के विनोद चंद्रन की पीठ ने पुनर्समीक्षा को खारिज करते हुए बहुमत से यह फैसला दिया। एक रिपोर्ट।
पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष, दीपेंद्र कुमार।
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर और पूरे एशिया के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। सिंगापुर में भारत सिंगापुर कारोबारी मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत की मजबूत आर्थिक विकास यात्रा, निवेश के अवसरों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कारोबार सुगम बनाने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान को विश्व में इतिहास के सबसे बड़े समन्वित आर्थिक अलगाव का सामना करना पड़ेगा। एक साक्षात्कार में श्री बेसेंट ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों पर द्वितीय प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका के मित्र देशों को अब फैसला लेना होगा कि वो अब किसके साथ खड़े हैं। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इन आर्थिक धमकियों को खारिज कर दिया है। भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने असाधारण दृढ़ता और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले सेट में पिछड़ने के बाद वापसी की और चौथी वरीयता प्राप्त चीन की जिया यीफेन और झांगशू शियान को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।